नमस्कार मीनाक्षी जी, SBS हिंदी के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
मीनाक्षी जी, आप सिडनी संस्कृत स्कूल की फाउंडर हैं, वहाँ की प्रिंसिपल हैं, तो हमें इस स्कूल के बारे में बताइए कि कब शुरू हुआ ये स्कूल और क्या क्या होता है इस स्कूल में।
इस शाला तो सिडनी संस्कृत शाला है इसका नाम, मगर इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल ऑफ वैदिक साइंसेस। ये तो 2006 जून में प्रारंभ हुआ। ये तो फर्स्ट संस्कृत कम्युनिटी लैंग्वेज स्कूल आउटसाइड इंडिया है। उद्देश्य था इस संस्कृत स्कूल का खोलने का, 100 साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ा रहे हैं, मगर प्राथमिक रूप से संस्कृत का किधर भी शुरू नहीं किया था। इसीलिए हमारे गण ऐसे निर्णय किया, मगर टिल 2006 इट वॉज ए क्लासिकल संस्कृत, इसको बोलते हैं हेरिटेज लैंग्वेज करके, मगर इट वॉज ए कम्युनिटी लैंग्वेज। इसीलिए हमने ऐसे पत्र लिखे DET को, स्कूल फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी लैंग्वेजेस, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को। तुरंत इन लोगों ने हा कर दिया, हम संस्कृत स्कूल प्रारंभ कर दिया। हमारा प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेंद्र शुक्ला था उस समय, उन्होंने बहुत प्रयत्न करके बहुत अच्छी तरह से पत्र लिखे ये साकार किया सपन को।
जी, तो आपके स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं इस समय, और इसकी जो कक्षाएं हैं संस्कृत पढ़ाने की वो कब कब होती हैं?
हमारे स्कूल में लगभग 50 बच्चे हैं। भानुवार 1 बजे से 3:30 बजे होता है, मार्सडन रोड पब्लिक स्कूल, मार्सडन रोड लिवरपूल में। और गुरुवार को ग्लेन फील्ड में, ग्लेन वुड पब्लिक स्कूल में 5 से 7 बजे तक कक्षा होती है।
और कौन कौन आपके स्कूल में एडमिशन ले सकता है?
कोई भी आकर यहाँ संस्कृत सीख सकते हैं। इन मन होनी चाहिए सीखने के लिए, क्योंकि संस्कृत इज अ वेरी मैथमेटिकल लैंग्वेज लाइक मैथमेटिक्स।
जी, पर मीनाक्षी जी, यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में सभी बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं वहाँ पर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, और घर पर भी वो अपनी मातृभाषा ही बोलते हैं, चाहे वो पंजाबी बोले, हिंदी बोले, गुजराती बोले, या कोई दक्षिण भारत की भाषा बोले, तो संस्कृत का क्या औचित्य रह जाता है? आपको क्या लगता है कि संस्कृत सिखाने से क्या उनको लाभ हो सकता है?
मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ, वैज्ञानिक रूप से भारतीय भाषाओं का जो मदर लैंग्वेज ऐसे बोलते हैं, ये संस्कृत भाषा है, क्योंकि इसमें 64 वेव एनर्जीज जो है उसको साउंड एनर्जीज में ट्रांसफर करके उस साउंड एनर्जीज को सिलेबल एनर्जी में डाल दिया। इसको हम बोलते हैं वर्णमाला। एक एक वर्ण का उच्चारण करने से ब्रेन में जो सेल्स है, फाइन मोटो स्किल्स इम्प्रूव हो जाता है। इसीलिए शुद्ध उच्चारण संस्कृत भाषा से ही आता है। इसीलिए प्रपंच में UK आप लिया तो, या कनाडा या जर्मन, वहाँ संस्कृत एक अति मुख्य भाषा के रूप से, टंग ट्विस्टिंग लैंग्वेज, और इसको बोलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में वाक योगा। हम तो बाहर का योगा करते हैं, व्यायाम शरीर को हो जाता है, मगर अंदर का जो शक्ति को, अंदर का जो जीव शक्ति, जो सेल्स है, कोश है, उसको उत्तेजित करने के लिए संस्कृत अक्षरों का उच्चारण से ही होता है।
जी, और मेरे ख्याल से संस्कृत को देव भाषा या डिवाइन लैंग्वेज भी कहते हैं।
हाँ, देव भाषा मतलब एक वर्ण का उच्चारण से दिव्यत्व प्राप्त हो जाता है। इसीलिए या भाषायाः दिव्यत्वं भवति सा देव भाषा इति, जिस भाषा का दिव्यत्व है वो देव भाषा, मतलब देवताओं का भाषा है, मतलब हाईली इंटेलेक्चुअल क्लास लैंग्वेज करके, क्योंकि जिसका शरीर रचना विधि को ठीक करना है ऐसे जो कोई महसूस करे वो लोग ही इस भाषा को सीख सकते हैं। क्योंकि इट नीड्स लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इट नीड्स योर अटेंशन और इट नीड्स योर टाइम ऑल्सो.
मीनाक्षी जी, यहाँ पर एक बात और पूछना चाहूंगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, जो भी साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे तो उसमें जो भी संस्कृत विषय पढ़ता था तो वो हमेशा कहा करते थे कि भाई ये विषय बड़ा ही मुश्किल है, इसे पढ़ना बहुत ही ध्यान से पड़ता है. जो आपके स्कूल में जो भी अध्यापक पढ़ाते हैं, वो ऐसी कौन सी टेक्निक्स या मेथोडोलॉजीज काम में लेते हैं कि संस्कृत पढ़ाना वो बच्चों के लिए आसान कर देते हैं, या बच्चे इस माहौल में रहते हुए भी संस्कृत सीख पा रहे हैं?
जब हम पढ़ते थे, हम तो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में पढ़ते थे. मतलब पहले सब मस्तिष्क में रखना, मतलब सब बाय हार्ट करना, मेमोराइज करना, बाद में इसको एग्जीक्यूशन करना करके. अभी तो मेथडोलॉजी डिफरेंट हो गया. एक तो पिक्टोग्राफिक टीचिंग हो गया, नहीं तो सिडनी संस्कृत स्कूल में ऐसे हमने मेथडोलॉजी इन्वेंट किया. क्योंकि जब हम 2006 में शुरू किए थे, हम भी गुरुकुल सिस्टम मेथडोलॉजी से ही करते थे, मगर फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी लैंग्वेजेस और DET इन लोगों का विषय में हम सोचे तो इनडायरेक्ट मेथड में जब हम टीच करते हैं, बच्चों को बहुत आसानी हो जाता है, क्योंकि दे कैन रिलेट टू द मेन स्ट्रीम स्कूल टीचिंग टेक्निक. हम भी ऐसे ही एक मेथडोलॉजी, I4 मेथडोलॉजी को मैंने अपनाया, इनोवेटिव इन्वेंटिव ऐसे करके. तो उसमें से हमने क्या किया, मैजिकल वर्ड, साइट वर्ड्स करके, जो ग्रामर का जो चीज है, वो सभी विषयों को हमने बहुत सुलभ मार्ग में वर्कशीट, वर्डशीट ऐसे करके हम दे देते हैं. और भी एक हमने इन्वेंट किया, कंप्लीट ग्रामर जो है एक सांग में रचा दिया, एक गीत में रचा दिया. एक गीत को हम ऐसे ही सिखाने लगे, जब बच्चे सीख गए, बाद में एक महीने के बाद इसका बड़ा सा एक ग्रामर क्लास ले लिया. आर्या, इज देयर एनी सिंपल टेक्निक दैट वी कैन रिमेम्बर? देन आई सेड, देखो आप जब ये गाना सीखते थे, कंप्लीट गाना इस ग्रामर का विषय ही है. दे कैन रिलेट इजिली एंड दे सेड, ओ द सॉन्ग वी रिमेम्बर इजिली, वी कैन अंडरस्टैंड द ग्रामर. इस मेथड से हमारे सारे 4 टीचर्स है, हम 2 ट्रेनिंग टीचर्स है, वो सभी लोग ऐसे छोटा छोटा राइम्स के द्वारा कलर्स सिखाते हैं, नंबर्स राइम्स के द्वारा सिखाते हैं, और ग्रामर सब सॉन्ग्स के द्वारा सिखाते हैं.
तो मीनाक्षी जी, साल भर में स्कूल द्वारा संस्कृत की शिक्षा देने के अलावा और भी कोई उत्सव या समारोह आदि मनाए जाते हैं?
हाँ, हम तो सीजनल कैंप्स करते हैं, और रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी करते हैं. कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम तो भगवत गीता का कंपटीशन रखते हैं. और भी एक बात है, रामायण का तो, राम की कथा तो सभी को मालूम है, वो कथा नहीं है, ये तो प्रसंग है. इसको बोलते हैं आख्यायिका, जो वाल्मीकि महर्षि ने देखा, इसको पद्य रूप में गा लिया. उस रामायण में जो वैज्ञानिक, मतलब साइंटिफिक वैल्यूज क्या है, आज तक हम उपयोग करते हैं, उसके द्वारा हम 2 एक्सपेरिमेंट किए थे. एक तो पुष्पक विमान, पुष्पक विमान को बच्चों ने रचाया, उसका सिस्टम्स कैसा होता है, ऐसे ही एक गीत रचाया. और सीजनल कैंप्स में भी ऐसे ही हम ऋतु के आधार से कैंप्स करते हैं. उस कैंप्स में भी हम थीम बेस्ड, दिस ईयर वी हैव कंडक्टेड, इट इज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिस्टलोग्राफी. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज द 100 ईयर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तीनों को मिला के हमने महाभारत के आधार पर एक कैंप किए थे, सम वसंत शिविरम करके. अपार्ट फ्रॉम दिस, 2013 में हम DET का एक प्रोजेक्ट स्कूल से लिया. सो उसमें हम धारावाल लैंग्वेज, कैंबल टाउन का जो आदिवासी लोग थे, इंडिजिनस कम्युनिटी, उन लोगों का जो लैंग्वेज है धारावाल, उसका जो हिंस था, उसको हमने संस्कृत में ट्रांसलेट भी किया. हमारे बच्चों ने उसको बाइलिंगुअल CD के रूप से ही हमने उसको रिकॉर्डिंग किया. और एंट्स इन द एप्पल ऐसे है ना, साउंड सीखने के लिए हमने 52 साउंड एनर्जीज का भी एक अरण्य अश्व आराम आम रहा आ आ आ आ आ ऐसे एक गाना भी रचाया। इस तरह से हम बहुत सुलभ मार्ग से हम बच्चों को सिखा रहे हैं। संस्कृतोत्सव में इसको हमने स्टेज में परफॉर्मेंस किया
जी। तो मीनाक्षी जी, आपको क्या लगता है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, स्कूल चला रहे हो और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर आप इतना जो काम कर रहे हैं, क्या भविष्य लगता है आपको ये जो बच्चे संस्कृत सीख रहे हैं और संस्कृत भाषा का?
हमारे जो संस्कृत स्कूल के विद्यार्थियों का भविष्य और संस्कृत का भी भविष्य, संस्कृत सीखने से हमारा भविष्य अच्छा हो जाता है, संस्कृत का भविष्य नहीं। संस्कृत इज ए कम्प्लीटली डेवलप्ड लैंग्वेज, हम इसके लिए कुछ भी कंट्रीब्यूशन दे नहीं सकते, हम केवल संस्कृत का सेवा कर सकते हैं। जो कोई आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, एक बार आप लैंग्वेज पढ़ लिया, भाषा अभ्यास कर लिया, यू कैन सी द हिडन वैल्यू और द ट्रेजरी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड साइंस।
जी,
संस्कृतस्य अक्षरमाला ओ अस्वरः ओ अस्वरः आई संस्कृतस्य अक्षरमाला ऊरुरु ए ऐयो अस्वरः ओ अस्वरः अहाये तव योगवाहो अनुस्वरमकारयितः अहादिसर्गः अहादिसर्गः आई संस्कृतस्य अक्षरमाला ऊरुरुरु ए ऐ ओ अस्वरः ओ अस्वरः
मीनाक्षी जी, तो बच्चों ने ये जो गाना सुना है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें।
अच्छा, वर्णमाला का संपूर्ण विषय जब हम बोलेंगे, इसमें स्वर है, अनुस्वर है, विसर्ग है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, ऐसे बहुत सारे विभाग है वर्णमाला जो चार्ट हम करते हैं। इसमें तीन विभाग होते हैं, स्वराह, व्यंजनानी, अयोगवाह। बाद में स्वर में भी बहुत सारे विभाग होते हैं। तो ये सारा का सारा जो विषय है, इसको इस गीत में हमने मिला दिया। बच्चे एक बार ये गीत को अभ्यास कर लेंगे, आराम से वो व्याकरण का जो वर्णमाला जो है इसका विभाग अच्छी तरह से वो समझ भी सकते हैं, याद में भी इन लोगों का होगा।
जी मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद SBS हिंदी से बात करने के लिए, और हमारी पूरी टीम की तरफ से संस्कृत स्कूल के लिए उज्जवल भविष्य की कामनाएं।
धन्यवाद।